ओम शांति। राजयोग के अंतिम सत्र में आप सबका हार्दिक स्वागत है। हमारा भारत देश अपनी प्राचीन योग विद्या के लिए प्रसिद्ध देश है। विदेशी भी खास भारत में आते हैं योग सीखने के लिए, और भारत के योगी भी विदेशों में जाते हैं योग विद्या का प्रचार करने के लिए। पर क्या हम भारतवासियों को स्पष्ट हैं कि यथार्थ योग किसे कहते हैं? योग के नाम पर अक्सर हम शारीरिक या औपचारिक क्रियाएं करते रहते हैं, लेकिन यहां जो राजयोग आपने सीखा वो सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य के हिसाब से नहीं, लेकिन आत्मिक आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए, मन बुद्धि की स्वस्थता के लिए, आंतरिक आत्मविकास के लिए है। श्रीमद् भगवद गीता, जिसे हम योग शास्त्र कहते हैं, आपने पढ़ा होगा, देखा होगा, हर अध्याय के नीचे लिखा होता है कि गीता योग शास्त्र है, और उसके हर अध्याय योग से जुड़े हुए हैं। अगर पूरी गीता का अध्ययन करो तो कहीं भी उसमें आसन प्राणायाम की या योग के नाम पर कोई क्रियाओं की बात नहीं है। योग जीवन पद्धति है, योग क्रिया नहीं है। जो हम सीख लें, सुबह शाम आधा घंटा करते रहें और जैसे जीते थे ऐसे जीते रहे, ऐसा नहीं है। राजयोग जीवन को श्रेष्ठ विधि से जीने की कला है। यहां दो घंटे के, एक घंटे के योगी बनने की बात नहीं है, यहां योगी जीवन बनाने की बात है। इसलिए राजयोग में मुख्य रूप से दो अभ्यास है जो आपने सीखे हैं, अपने आप को आपने जान लिया है कि हम शरीर नहीं हैं, परंतु इस शरीर को धारण करने वाली चैतन्य शक्ति आत्मा है। शरीर के लिए जैसे हवा पानी खुराक चाहिए, ऐसे हमें अपने चैतन्य आत्मस्वरूप के लिए सद विचार चाहिए, सद ज्ञान चाहिए, स्वचिंतन शुभचिंतन चाहिए, जिसके द्वारा ही हम सद्गुणों का और आंतरिक रूहानी शक्तियों का विकास कर सकते हैं। जैसे शरीर पांच तत्वों से बना है, पृथ्वी, आकाश, जल, वायु और अग्नि, इसलिए पांच तत्वों का बना हुआ शरीर पांच तत्व से ही मेंटेन होता है, पांच तत्वों से ही रिफ्रेश होता है। स्वच्छ हवा मिलती है, निर्मल शीतल जल मिलता है, सात्विक पौष्टिक खुराक मिलती है, तो हम अपने आप को तरोताजा महसूस करते हैं, शक्तिशाली महसूस करते हैं। तो पांच तत्वों का बना शरीर पांच कर्मेंद्रियों से पांच तत्वों को लेकर के स्वस्थ रहता है। अब हम सबने इस सत्य को समझा है कि हम आत्मा हैं, जिसकी मुख्य तीन शक्तियां हैं मन, बुद्धि और संस्कार। आत्मा इन तीन शक्तियों के द्वारा सद्ज्ञान, सद्गुण और रूहानी शक्तियों को धारण कर अपने आप में शक्तिशाली स्वस्थ महसूस कर सकता है। अल्पकाल के लिए इंद्रिय रसों को हम प्राप्त करते हैं, पर इससे हमें सात्विक विवेकपूर्ण आनंद सुख नहीं मिलता है। आत्मा चूंकि अविनाशी है, इसलिए जब तक अविनाशी सुख शांति आनंद प्रेम प्राप्त नहीं होता है, तब तक आत्मा को संतुष्टता नहीं होती। इसलिए यही सुख शांति आनंद प्रेम प्राप्त करने के लिए विभिन्न कर्मों के द्वारा, संबंधों के द्वारा, चीज वस्तुओं के द्वारा उसे प्राप्त करने का प्रयास हम करते रहते हैं। आत्मा को अविनाशी प्राप्ति होने पर ही आंतरिक संतुष्टता होती है। और दूसरी बात कि हरेक आत्मा ओरिजिनली सत्य है, शुद्ध है, पवित्र है। इसलिए जब तक सत्य रूप में, शुद्ध रूप में, पवित्र रूप में ये प्राप्तियां नहीं होती हैं, शांति के, सुख के, आनंद की, तब तक भी उसे संतुष्टता नहीं होती। अगर जरा भी दैहिक भाव, स्वार्थ, विषयी भाव होता है तो उस प्यार, सुख, आनंद में मजा नहीं आता है। तो आत्मा को अविनाशी प्राप्तियां चाहिए, सत्य प्राप्तियां चाहिए। और जो शांति, सुख, आनंद, प्रेम चाहिए, ये शांति, सुख, आनंद, प्रेम कोई स्थूल चीजें नहीं है, ये सूक्ष्म अनुभूतियां हैं, ये आत्मा की स्थिति है। इसलिए जहां तक सुख, शांति, आनंद, प्रेम के सात्विक और अविनाशी अनुभूति की बात है, वो आत्मा से रिलेटेड है, शरीर से नहीं। इसलिए राजयोग को अंतर यात्रा कहा जाता है। अपने अंतर मन की गहराई में जाकर अपने आंतरिक शुद्ध स्वरूप में स्थित होकर और उस परम कल्याणकारी सदा पावन रहम दिल प्यार के सागर परमात्मा से जब हम जुड़ते हैं तो वो निजानंद स्वरूपानंद सदानंद परमानंद की अनुभूति हमें जीवन में होती है। इस दृष्टि से राजयोग को अगर हम देखें तो जैसे व्यक्ति व्यक्ति से मिलन संपर्क करती है बातचीत करती है वो भौतिक साधन और प्राकृतिक शक्ति के माध्यम से करती है। एक वक्ता और श्रोताओं के बीच संपर्क ध्वनि शक्ति और प्रकाश शक्ति के माध्यम से होता है। अगर यहां घना अंधेरा हो और मैं बोलूं ही नहीं या ये साउंड सिस्टम ना हो तो मेरे और आपके बीच जो कॉन्टेक्ट स्थापित होना चाहिए वो नहीं हो सकता है। इसको कहते हैं कॉन्टेक्ट थ्रू लाइट एंड साउंड। हम टेलीफोन के माध्यम से मिलते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिक पावर से कॉन्टेक्ट होता है। हम मोबाइल के माध्यम से या आजकल के जो भी कम्युनिकेशन के साधन हैं उनके माध्यम से एक दो के संपर्क में रहते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर से कॉन्टेक्ट होता है। लेकिन आत्मा का परमात्मा से मिलन आत्मा का परमात्मा से संपर्क बातचीत कोई भौतिक साधन या प्राकृतिक शक्ति के माध्यम से नहीं हो सकता है, क्योंकि न हम भौतिक हैं न परमात्मा भौतिक है। शरीर भौतिक है, पांच तत्वों से बना है, मैटर से बना है, इसलिए शरीर भी एक मटेरियल है। लेकिन मैं आत्मा हूं, एक लाइट हूं, एक माइट हूं। परमात्मा भी परम चैतन्य शक्ति है, इसलिए आत्मा का परमात्मा से मिलन कोई क्रिया या साधन के माध्यम से नहीं हो सकता है। सिर्फ मन और बुद्धि से ही हो सकता है। हमें मनन चिंतन करते हुए परमात्मा स्मृति में स्थित होना है और उस स्मृति का आनंद और सुख लेना है। इसलिए राजयोग के अभ्यास में सबसे पहली बात कि इसमें कोई शारीरिक क्रियाएं नहीं है। जैसा कि योग के नाम पर आसन प्राणायाम व्यायाम की क्रियाएं हम करते रहे हैं ऐसी कोई क्रियाएं नहीं। कई आसन प्राणायाम की क्रियाएं इतनी कठिन होती हैं कि बहनें माताएं बूढ़े बीमार कर ही नहीं सकते। परमात्मा को याद करने की विधि ऐसी मुश्किल नहीं होनी चाहिए जो कोई कर सके कोई ना कर सके। यहां बिगर आसन आराम से कुर्सी सोफा पर बैठे हैं, फिर भी एक घंटे में कितनी बार पांव ऊपर नीचे होते हैं। अगर आप सबको आसन लगाकर बिठा दिया जाए तो गॉड कॉन्शियस बनने के बजाय, सोल कॉन्शियस बनने के बजाय आप बॉडी कॉन्शियस ही बन जाएंगे, क्योंकि हमें रोज आसन लगाकर बैठने का अभ्यास नहीं है। इसलिए राजयोग में हम कहते हैं कि जब भी आप अभ्यास करने बैठे अपनी सहज स्थिति में बैठना है, फिजिकली रिलैक्स होकर के बैठना है। लेकिन योग अभ्यास के समय मन बुद्धि से अटेंटिव होकर बैठना है, लक्ष्य पूर्वक बैठना है कि ये आधा घंटा एक घंटा मैं परमात्मा चिंतन के लिए बैठा हूं, प्रभु मिलन के लिए बैठा हूं, अभी मुझे और बातें नहीं सोचनी है। तो मन से अटेंटिव बैठना है, फिजिकली रिलैक्स होकर के बैठना है। बेशक फिजिकल हेल्थ के लिए आप आसन करिए, प्राणायाम करिए, व्यायाम करिए, वो शरीर के लिए है, पर जहां तक मन बुद्धि परमात्मा में लगाने की बात है इसमें कोई क्रिया की आवश्यकता नहीं है। आजकल फिजिकल योग सब करते हैं, आप में से कईयों को पद्मासन लगाकर, अर्ध पद्मासन लगाकर, वज्रासन लगाकर बैठने का अभ्यास हो सकता है। शरीर से आसन लगाकर घंटा दो घंटा आधा घंटा आप स्थिर बैठ सकते होंगे, पर आप सोचिए कि शरीर से स्थिर बैठ गए पर मन बुद्धि परमात्मा में स्थित नहीं हुए। मन बुद्धि परमात्मा स्मृति में आसन्न नहीं हुए, केवल बाह्य शरीर से स्थिर बैठ गए, इसका क्या अर्थ है? इसका कोई मतलब नहीं। हमें तो मन बुद्धि परमात्मा में आसन्न करना है, स्थित करना है। इसलिए परमात्मा पिता जो इस राजीव के आदि शिक्षक है, वो हम आत्माओं को यही बताते हैं कि शरीर ही एक विचित्र गुफा के समान है और मस्तक के आसन पर आप आत्मा विराजमान है ही, अब और कोई आसन लगाने की आवश्यकता नहीं। हमें अपने सोल कॉन्शियस स्थिति में स्थित होकर फिर परमात्मा मिलन का अभ्यास करना है। तो इसमें कोई शारीरिक क्रियाएं नहीं है, इसमें कोई औपचारिक क्रियाएं भी नहीं। जैसा कि भक्ति में परमात्मा स्मृति में मन बुद्धि एकाग्र करने के लिए, प्रभु से मनोमिलन मनाने के लिए हम कई प्रकार के प्रयास करते रहे हैं। कोई माला फेरते हैं, कोई मंत्र रटते हैं, कोई मुख से आरती भजन गाते हैं। राजयुग में ऐसी औपचारिक क्रियाएं नहीं है। रटना जपना नेचुरल नहीं है, औपचारिक क्रियाएं हैं। हम अपने मित्र संबंधियों को याद करते हैं, क्या हम उनका नाम रटते हैं? महेश भाई महेश भाई महेश भाई, हम ऐसे रटते हैं? नहीं, हम उन्हें स्वाभाविक याद करते हैं, हम उनकी स्मृति में रहते हैं, हम रटते नहीं। किसका गीत बज रहा है? किसका आवाज आ रहा है? गीत कोई बजा। इसलिए राजयुग में न माला फेरनी है न मंत्र रटना है। इवन भक्ति में ये हमारे विभिन्न प्रयास थे, समय प्रति समय जो संत महात्माएं हुए, धर्मात्माएं हुए, हरेक ने नए नए अभ्यास सजेस्ट किए कि चलो माला फेर के देखो, मंत्र रट के देखो, मन एकाग्र होता है। पर अनुभव क्या है, रिजल्ट क्या है कि हम माला फेरते रहते हैं और मंत्र मन भी फिरता रहता है। हम मंत्र रटते रहते हैं और मन भटकता रहता है। इसलिए वन भक्ति में भी जो ज्ञानी भक्त हुए हैं उन्होंने स्पष्ट कहा है, ये कबीर जी ने स्पष्ट कहा है कि माला फेरत युग हुआ गया न मन का मैल रे। उन्होंने सजेस्ट किया है कि हाथ के मण के छोड़कर मन का फेर। तो ये मनोस्थिति बदलने की बात है, मन के फेरने की बात रहे। परमात्मा मिलन के लिए प्रथम अंतर्मुखी बनने की आवश्यकता है। आज हमारा मन बहिर्मुखी बन गया, बॉडी कॉन्शियस बन गया है, संसाराभिमुख हो गया है। इसलिए शरीर के संबंधों के प्रवृत्ति के साधनों के वही चीजें चिंतन में आती रहती है, क्योंकि हम संसाराभिमुख बन गए, बॉडी कॉन्शियस बन गए। राजयुग में हमें प्रथम सोल कॉन्शियस बनना है, अंतर्मुखी बनना है, परमात्मा भिमुख बनना है। तो ये मनोस्थिति बदलने की बात है। इसलिए न माला फेरनी है ना ही इसमें कोई शब्द मंत्र रटना है। अक्सर कोई न कोई मंत्र लेते हैं और फिर जपते रहते हैं। पर ये भी रटना जपना औपचारिक क्रियाएं हैं, अभ्यास हो जाने के बाद वो यांत्रिक बन जाते, मैकेनिकल। फिर आप मंत्र रटते रहेंगे, मन भटकता रहेगा। कई बार व्यक्ति मंत्र के अर्थ को भी नहीं समझता है। कई क्रियाकांड में आप देखिए, ब्राह्मण पंडित श्लोक बोलते रहते हैं, हम अर्थ कितना समझते। जब अर्थ ही नहीं समझते हैं तो हम अभ्यास क्या करेंगे और आचरण में क्या लाएंगे। इसलिए राजयोग में हम कहते हैं कि हमें मंत्र रटना नहीं है, मंत्र के अर्थ को समझना है और आचरण में लाना है। इसलिए इसमें कोई शब्द मंत्र नहीं है। कोई ओम शांति ओम शांति ओम शांति रटने की बात नहीं है। ओम शांति कहने की प्रथा की बात नहीं है। कोई ओम शांति लिख लिख कर नोटबुक भरने की बात नहीं। ओम शांति बनना है, मुझे शांत आत्मा बनना, शांत स्थिति बनानी। इसलिए इसमें कोई शब्द मंत्र नहीं है, ना ही इसमें हमें मुख से कुछ भी गाना आवाज नहीं करना है। हम मुख से आरती गाते हैं, भजन गाते हैं, प्रार्थना गाते हैं, रात रात माइक पर जोर जोर से भजन गाते हैं, लेकिन सत्यता क्या है कि मुख का आवाज परमात्मा को नहीं पहुंचता है। मुख का आवाज परमात्मा को नहीं पहुंचता है। परमात्मा को कौन सा आवाज पहुंचता है? अंतर मन का आवाज उनको पहुंचता है। दिल का सच्चा प्यार परमात्मा को पहुंचता है। वो प्यार परमात्मा से नहीं रहा तो हम बाह्य मुख से गाने लगे, आवाज करने लगे। इसलिए राजयोग में हम साइलेंस में बैठते हैं और मन ही मन प्यार से उस पिता परमात्मा को याद करते हैं, उनकी स्मृति में रहते हैं। इसलिए आप देखते हैं यहां कि हर योग अभ्यास शुरू करने के समय या कोई भी कार्यक्रम यहां शुरू करते हैं, एक गीत बजाते हैं, अंत में एक गीत बजाते हैं, बाकी साइलेंस ट्यून होता है। गीत वो भी आप देख रहे हैं ईश्वरीय ज्ञान के हैं, परमात्मा प्यार के हैं। प्रारंभिक स्थिति में सहायक है, अनिवार्य नहीं है। हमारा मन परमात्मा के रिलेशन में ड्राई हो गया है। गीत मन में भाव जगाते हैं, संगीत उस भाव को गति देते हैं। पर जब आपका अपना प्यार परमात्मा से हो जाता है, फिर आपको इन गीतों की भी जरूरत नहीं, फिर आपका मन ही गाता है। इसलिए अंतर मन के भाव, प्यार, संकल्प परमात्मा को पहुंचते हैं, ये मुख की आवाज नहीं। तो राजयोग में कोई औपचारिक क्रियाएं भी नहीं है। अक्सर भाई बहने पूछते हैं कि हमें योग कहां लगाना है, क्या हम सामने मूर्ति रखें, चित्र रखें, फोटो रखें, हमें मन कहां लगाना है। मैं आप सबसे ही पूछना चाहूंगी, क्योंकि आपने राजयोग के 4-5 लेसन कर लिए हैं, आप ही बताइए, क्योंकि अब आप सिर्फ भक्त आत्मा नहीं, ज्ञानी आत्माएं हैं। आपने अपने आप को जान लिया है, पिता परमात्मा का परिचय प्राप्त कर लिया है, अब आप बताइए हमें योग कहां लगाना है। हमें योग कहां लगाना है, किससे लगाना है? परमात्मा से योग लगाना है। हमें योग डायरेक्ट परम चैतन्य परमात्मा से लगाना है, न कि परमात्मा के चित्र से या मूर्ति से योग नहीं लगाना। ये तो भक्ति में हम परमात्मा को मानते थे पर जानते नहीं थे। इसलिए हरेक ने अपनी अपनी भावना श्रद्धा अनुसार अपने अपने इष्ट के चित्र मूर्ति फोटो रख दिए। पर अब जबकि हमें परमात्मा का सही परिचय प्राप्त है, इसलिए परमात्मा जो है, जैसे हैं, जहां रहते हैं, वहां मन बुद्धि लगाना है। परमात्मा जो है, क्या है, सारी महिमा आप जानते कि वो ज्ञान का सागर है, शांति दाता है, दुख हरता सुख करता है, ऑलमाइटी है, सदा पावन है। परमात्मा जो है और जैसा है, कैसा है, जैसी मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं, परमात्मा भी परम चैतन्य ज्योति बिंदु स्वरूप है। और जहां रहते हैं, कहां रहते हैं, परम धाम, वहां मन बुद्धि हमें लगाने। और परमात्मा भौतिक शरीरधारी है ही नहीं, इन आंखों से देखने की बात ही नहीं है ना। अभी आप इस हॉल में बैठे हैं, अभी इस हॉल में इन आंखों से सूर्य को आप नहीं देख रहे हैं, पर जैसे ही सूर्य शब्द मैंने बोला, आप सबने क्या किया, मन की आंख से विजुअलाइज किया ना, ज्ञान नेत्र से परमात्मा सूर्य को देखा ना। परमात्मा तो भौतिक है ही नहीं, इन आंखों से देखने की बात ही नहीं, उसे जानना है, समझना है। उस ज्ञान से मन की आंख से देखना है और बुद्धि से याद करना है। इसलिए हमें योग, इवन ये जो सिंबल है पॉइंट ऑफ लाइट का, वो समझाने के लिए है। हमें इस प्रतीक से योग नहीं लगाना। परमात्मा अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप है, ये समझाने के लिए है। हमें इनसे योग नहीं लगाना। हमें योग डायरेक्ट परम चैतन्य परम ज्योति बिंदु परमात्मा से लगाना। यहां जो भी चित्र आप देखते हैं, या म्यूजियम में अनेक चित्र हैं, इवन जिन जिन सेवा केंद्रों के माध्यम से आप यहां आए हैं, आपने हमारे केंद्रों की मुलाकात ली होगी, ज्ञान के अनेक चित्र लगे हुए हैं, पर वो चित्र ज्ञान समझने और समझाने के लिए है। हमें उन चित्रों से योग नहीं लगाना। और इस बात को आप मानेंगे कि घर में जैसे चित्र हम लगाते हैं, ऐसा ही चरित्र हमारा बनता है। अगर हम एक्टरों के, क्रिकेटरों के वही फोटो लगाते हैं, तो वही प्रेरणा लेते हैं और वैसे ही बनने का प्रयास करते हैं। ज्ञान के तो सद ज्ञान की बातें बुद्धि में आएगी। इसलिए इसमें कोई मूर्ति चित्र फोटो का आधार नहीं है। वो तो भक्ति में हम करते ही थे। अब जब सत्य ज्ञान मिला है, हमें एक कदम आगे बढ़ना है। जो अभ्यास चित्रों के माध्यम से क्रियाओं से हम करते रहे हैं, परमात्मा को याद करने का अभ्यास ज्ञान बल से मन और बुद्धि से करना है। तो राजयोग बहुत सहज योग है, हर कोई योगी बन सकते है। राजयोग प्रवृत्ति मार्ग का योग है। हमें घर गृहस्थ में रहते हुए अपने जीवन को पवित्र और योगी बनाना है। पर जब भी हम भाई बहनों को परमात्मा का ये दिव्य संदेश देते हैं कि पवित्र बनो, योगी बनो, तो अक्सर भाई बहने ये सोचते हैं कि हम योगी कैसे बन सकते हैं। हम गृहस्थी हैं, संसारी हैं, हम अनेक संबंधों में बंधे हैं, अनेक जिम्मेवारियां हैं, हम योगी कैसे बन सकते हैं। मूल कॉन्सेप्ट रॉन्ग है। ये मानते हैं कि योगी बनना हो तो सब कुछ छोड़ना पड़े, कहीं शांत एकांत में जाकर बैठे तो मन परमात्मा में लग सकता है। भक्ति में अब तक जो योगी हुए, तपस्वी हुए, घर बार छोड़कर हुए, इसलिए गृहस्थी भाई बहने सोचते हैं हम योगी कैसे बन सकते हैं। लेकिन राजयोग हमें क्या सिखाता है? हमें दुनिया नहीं छोड़नी है, देहभान छोड़ना है। दुनिया छोड़ने की आवश्यकता नहीं, बॉडी कॉन्शियसनेस को चेंज करना है। बॉडी कॉन्शियसनेस, देहाभिमान, मन की चंचलता का मूल कारण है। जब हम अपने वास्तविक आत्म स्वरूप को भूल जाते हैं, खुद को शरीर समझने लगते हैं, बॉडी कॉन्शियस बनते हैं, तो बॉडी से रिलेटेड व्यक्ति, वस्तु, प्रवृत्ति, स्थान, संसार, कोई बातें हमें याद आने लगती है। तो दुनिया छोड़ने की, जिम्मेवारियां छोड़ने की, संबंधों को छोड़ने की जरूरत नहीं है, कॉन्शियसनेस को चेंज करना है। हमें सोल कॉन्शियस बनने की जरूरत, इसलिए न स्थान बदलना है न ड्रेस बदलनी है। स्थान नहीं बदलना है, आत्मा स्थिति बदलनी है। बाह्य ड्रेस बदलने की बात नहीं है, आंतरिक वृत्ति स्मृति चेंज करने की आवश्यकता है। इसलिए कोई भगवे वस्त्र पहन लेने से या सफेद पहन लेने से कोई योगी नहीं बन जाता है। ये हमारी यूनिफॉर्म है, हर विद्यालय की, ऑर्गेनाइजेशन की, कंपनी की अपनी यूनिफॉर्म होती है। ये वाइट ड्रेस हमारी यूनिफॉर्म है। हम फुल टाइम इस सेवा में समर्पित है, इसलिए हम फुल टाइम सफेद पहन, पर केवल सफेद ड्रेस पहन लेने से, भगवान पहन लेने से कोई योगी नहीं हो जाता है। योगी बनने के लिए हमें अपनी आंतरिक मनोस्थिति बदलनी है, और उसके लिए हमें अपने चिंतन को बदलना है, वृत्ति को बदलना है। सफेद ड्रेस स्वच्छता, पवित्रता, शांति का प्रतीक है। योगी को सफेद वस्त्र पसंद आते हैं, क्योंकि ये शांति और पवित्रता का सूचक है। राजयोग का ध्येय बहुत ऊंचा है, सिर्फ परमात्मा का दर्शन, नमन, वंदन, गायन, पूजन करके खुश हो जाने की बात नहीं है। हम नियम से सुबह शाम पूजा पाठ, भजन, कीर्तन, धूप दीप कर लेते हैं और हमारी भावना संतुष्ट हो जाती है कि मैं धार्मिक हूँ, परंतु राजयोग का ध्येय पुजारी से पूज्य बनना है, विकारी से निर्विकारी बनना है, भिखारी से अधिकारी बनना है। इसलिए योग अभ्यास के समय न परमात्मा को पुकारना है। आप देखिए कोई परमात्मा को पुकारते हैं, चिल्लाते हैं, जोर जोर से माइक पर चिल्लाते हैं, अल्लाहु अकबर, हे भगवान, ओ गॉड, चिल्लाना नहीं है, पुकारना नहीं है। बताए ना, मुक्का आवाज उनको नहीं पहुंचता है। दिल का प्यार, अंतर आवाज उनको पहुंचता है, इसलिए चिल्लाना नहीं है, पुकारना नहीं है। कई कहते हैं हम भगवान को याद करते हैं, पर अक्सर वे क्या करते रहते हैं, भगवान से मांगते रहते हैं, परमात्मा से मांगते रहते हैं, हे भगवान, विद्या दो, बुद्धि दो, धन दो, तंदुरुस्ती दो, मेरा ये काम कर दो। हम भगवान से मांगते रहते, इसलिए परमात्मा कहते हैं कि तुम याद नहीं करते थे, फरियाद ही करते रहते थे। राजयोग में हम परमात्मा से मांगते नहीं हैं। हम जानते हैं हम परमात्मा के बच्चे हैं। बच्चा तो वारिस होता है ना, हम उनके वारिस हैं, अधिकारी हैं, हमारा बर्थ राइट है परमात्मा से प्राप्त करना। हमें मांगने की जरूरत नहीं है, हमें लायक बच्चा बनने की जरूरत है। लायक बच्चे को माँ बाप खुद ही देते देते हैं कि नहीं देते, योग्य बच्चे को माता पिता अपने आप सब कुछ देते, खुद नहीं खाते हैं, नहीं पहनते हैं, बच्चे के लिए करते। हमें योग्य प्रभु संतान बनने की आवश्यकता, हमें सपूत बनने की आवश्यकता है। परमात्मा के लिए हम गाते हैं, त्वमेव माता शिपिता त्वमेव, पर क्या हम अपने आप को ईश्वरीय संतान कहलाने योग्य हैं? हमें योग्य बनने की जरूरत है, तो उसकी याद से ही प्राप्ति है, उनकी स्मृति से ही अनुभूति है। मांगने की जरूरत नहीं। कई प्रार्थना करते हैं, परमात्मा को विनती करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, बड़े दीन हीन लाचार बनकर प्रभु को प्रार्थना करते रहते हैं, इतनी शक्ति हमें देना। पिता ऑलमाइटी शक्ति दाता और बच्चे कमजोर, हमें परमात्मा को विनती करने की जरूरत नहीं है, वो तो है ही दाता, वो है ही दाता, दे ही रहा है, शांति दाता, सुख दाता, शक्ति दाता, मुक्ति दाता, सदगति दाता, वर दाता, वो तो है ही दाता, वो दे ही रहा है, वो सागर है, रहम दिल है, कल्याणकारी है, वो निरंतर दे रहा है। हमें उनको रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। जो दे ही रहा हो उनको कहना कि देना देना, ये तो इंसल्ट करना है ना। हमें सोचने की आवश्यकता है, आत्म खोज करने की आवश्यकता है कि पिता सागर है, दाता है, दे ही रहा है, हमें क्यों नहीं मिल रहा है, हमें क्यों नहीं मिल रहा है। स्वदर्शन करने की आवश्यकता है। उसका यही कारण है हमारा परमात्मा से योग नहीं है। योग मीन्स कनेक्शन। हमारा उनसे कोई संपर्क नहीं रहा। आपके शहर में पावर हाउस है पर आपको अपने घर में बिजली तो तब मिलेगी ना जब आप उनसे कनेक्शन जोड़ेंगे। परमात्मा लाइट हाउस, माइट हाउस, स्पिरिचुअल पावर हाउस है पर मन और बुद्धि की तार उनसे नहीं जुड़ी। हरेक अपने आप को चेक करिए, हमारे मन और बुद्धि की सूक्ष्म तारें कहां जुड़ी है, हमने अपने मन बुद्धि कहां अटैच करके रखे हैं। हम तो देह में, संबंधों में, दुनिया में, धन में, साधन में, हम तो वहां अटैच है। परमात्मा से अटैच नहीं है। मुख भजन गा रहा है, हाथ ताली बजा रहा है पर मन बुद्धि कहां है। हमें मन और बुद्धि की सूक्ष्म तारे उस परमात्मा से जुड़नी है। ये इनर लिंक है, इसलिए अंतर यात्रा इसको कहा। इसलिए प्रथम अभ्यास, जैसे हम वायर जोड़ते हैं तो पहले क्या करते, ऊपर का इंसुलेटिंग लेयर निकालते हैं, अंदर के सूक्ष्म तारे जोड़ते हैं। हमें पहले बॉडी कॉन्शियस से सोल कॉन्शियस बनना है। इसलिए पहला अभ्यास स्वचिंतन आपको बताया गया। राजीव का प्रथम लेसन कौन सा था, खुद को जानो ताकि स्व में स्थित हो, आत्मभिमानी बन, मन बुद्धि की तार, लगन, अटेंशन, चिंतन उस परमात्मा से जुड़ना है। तो ऑटोमेटिक स्मृति से ही अनुभूति होती है। दूसरा, योग मीन्स रिलेशन। प्राप्ति रिलेशन से होती है। आपके पास लाखों रुपए हो पर मेरा आपसे कोई संबंध ना हो तो मुझे थोड़ी प्राप्ति होगी। प्राप्ति संबंध से होती है। हमारा परमात्मा से कोई संबंध नहीं रहा, हम संबंधों का वर्णन करते हैं, गाते हैं, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो, गाते हैं ना, तुम माता पिता हम बालक तेरे, गाते हैं, वर्णन करते हैं। राजयोग में हम कहते हैं हमें संबंधों का वर्णन करने की जरूरत नहीं है। आप खुद बताइए, क्या आपके बच्चे रोज घर में आपके सामने बैठकर गाते हैं क्या, तुम मेरी मम्मी हो, तुम मेरे पापा हो, वर्णन करते हैं क्या? बच्चे को परख है, एक छोटे बच्चे को भी परख है, यही मेरे माँ बाप है। सैकड़ों नर नारियों में उनको निश्चय है, यही मेरे माता पिता है। हमें मुख से वर्णन करने की जरूरत नहीं है, हमें निश्चय करने की जरूरत है, परमात्मा ही मुझ आत्मा के पिता है। और अब चूंकि परमात्मा का सही परिचय मिला है, अब आपको सिर्फ मानना नहीं है, आपने यथार्थ रूप से जाना है, अब अपने विवेक से चिंतन कर उसे पहचानना है, निश्चय करना है, परमात्मा ही हम आत्माओं के असली माता पिता बंधु गुरु सखा है। हमें स्पष्ट हो जाना चाहिए कि ये शरीर के माता पिता भाई बहन मित्र संबंधी हैं, और ये एक जन्म के हैं। ये शरीर छूटेगा, ये संबंध भी समाप्त हो जाएंगे, नया शरीर लेंगे, नए माता पिता भाई बहन मिलेंगे। ये देह संबंध है, एक जन्म के संबंध है, लेकिन मुझ आत्मा का असली अविनाशी संबंध परमात्मा से, वो पिताओं का पिता, शिक्षकों का शिक्षक, गुरुओं का गुरु, पतियों का पति, नाथों का नाथ है। जब हम खुद को आत्मा निश्चय कर जीवन के सर्व संबंध परमात्मा से जोड़ते हैं और मन वचन कर्म से फॉलो करते हैं, तो प्राप्ति ही प्राप्ति है, अनुभूति ही अनुभूति है। मांगने की, विनती करने की जरूरत ही नहीं रहती। इसलिए योग का अर्थ है मिलन, जोड़, कनेक्शन, रिलेशन, परमात्मा से संबंध जोड़ना, उनकी याद स्मृति में रहना, उनसे प्यार करना, उनका बन जाना। उसे योग कहते हैं। हम परमात्मा को याद करते हैं पर कैसा याद करते हैं? कोई सिर्फ नियम से याद करते हैं। हमारा नियम है, हम रोज सुबह शाम नियम से काम पूरा कर लेते हैं। कोई कहते हैं हमारे बाप दादा के जमाने का नियम है, हाँ मेरी सास करती थी मैं भी करती हूं, पर सिर्फ नियम से, न समझ है न प्यार है। प्यार है तो याद करना नहीं पड़ता, सिर्फ याद आती नहीं है, बल्कि जितना जिगरी सच्चा प्यार, हम कहते हैं मुझे उनकी याद सताती है, मैं भूलना चाहूं तो भी नहीं भूल सकती हूं। हमारी प्रीत परमात्मा से नहीं, बाहर जोर से बारिश हो रही हो पर आपने अपना बर्तन उल्टा रखा हो तो भरेगा नहीं भरेगा? वो तो बरस रहा है, दे रहा है, पर हमें क्यों नहीं मिल रहा है? समझ गए ना कारण? लोटा उल्टा है, बुद्धि विपरीत है, परमात्मा से प्रीत बुद्धि नहीं है। इसलिए याद करते हैं पर स्वार्थ से याद करते हैं। परमात्मा से कुछ चाहिए इसलिए मतलब से भक्ति करते हैं। मुझे ये प्राप्ति हो जाए, काम हो जाए, हाँ तो मैं ये करूंगी वो करूंगी फलाना करूंगी, तो ये तो मतलब की याद है ना। उनसे प्राप्त हो सकता है इसलिए याद करते, अगर उनसे प्राप्त ना हो तो हम उनको याद भी ना करें। स्वार्थ से याद करते हैं, कोई भय से याद करते हैं कि मुझे कुछ हो ना जाए, मेरे काम में विघ्न ना आ जाए, मेरे गड़बड़ घोटाले फूट ना जाए, भय से याद करते। हमें प्यार से याद करना है, यथार्थ रीति जान पहचान कर निश्चयात्मक बुद्धि बन, दिल के सच्चे प्यार से उस पिता को याद करना है। हम ऐसा नहीं कहते हैं आप 3 दिन में योगी बन जाएंगे, बेशक योग का यथार्थ ज्ञान आप प्राप्त कर लेंगे, पर योगी बनने के लिए हमें रोज अभ्यास करने की आवश्यकता है। क्योंकि हम बॉडी कॉन्शियस बन गए हैं, संसाराभिमुख बन गए हैं, इसलिए फिर से सोल कॉन्शियस बनने के लिए, गॉड कॉन्शियस बनने के लिए हमें रोज अभ्यास की आवश्यकता है। इसलिए जैसे जैसे आप ज्ञान सुनते जाएंगे, अभ्यास करते जाएंगे, और जितना जिगरी अनन्य प्यार परमात्मा से होता जाएगा उतनी एकाग्रता आती जाएगी, अनुभूति की स्थिति पर आप पहुंचते जाएंगे। तो राजयोग सर्व योगों में श्रेष्ठ इसलिए क्योंकि इसका आदि शिक्षक परमात्मा है। सर्वश्रेष्ठ योग सर्व योगों का राजा इसलिए राजयोग कहते हैं। सहज योग है, इजी एंड नेचुरल। कर्म योग, कर्म करते भी हम परमात्मा स्मृति में रह सकते हैं। इसका आधार सत्य ईश्वरीय ज्ञान है इसलिए इसको ज्ञान योग कहते हैं। सद्ज्ञान प्राप्त करने के बाद परमात्मा से जिगरी सच्चा प्यार हमें मग्न बनाता है इसलिए ये प्रेम योग भी। और लास्ट बात, इस योग अभ्यास की विधि इतनी सरल है, नेचुरल है, इसमें आंख बंद करने की भी जरूरत नहीं। अक्सर परमात्मा को याद करने बैठते हैं आंख बंद करके बैठते हैं। हमने देखा स्कूलों में बच्चों को प्रार्थना कराते हैं, जबरदस्ती आंख बंद करवाते। कहते हैं मंदिर दर्शन करने जाते हैं वहां भी आंख बंद करके खड़े रहते हैं। क्यों हम आंख बंद करके बैठते? हमारी मान्यता गलत है। हम ये समझते हैं कि आंखें खुली होंगी हमें सब कुछ दिखाई देगा, मन भटक जाएगा, इसलिए आंख बंद करके बैठते। पर क्या आंख बंद करने के बाद मन नहीं भटकता है? क्या अनुभव है? भटकता है। आंखें खुली हैं, ये चार दीवार के बीच में जो है वो दिखाई देता है, पर आंख बंद करने के बाद तो सारी दुनिया दिखाई देती है, जिंदे मरे सब दिखाई देते। फिजिकल आई की लिमिट है, मन की आंख की कोई लिमिट है? इसलिए आंख बंद करने की जरूरत नहीं है, मन परमात्मा के प्रति फोकस करने की जरूरत है। और ये अनुभव है, कई बार आंखें खुली है, हम ऐसे बैठे हैं, कोई देखेगा तो लगेगा कि ये कुछ देख रहे हैं और पूछते हैं कि यहां से फलाना गया, तो हम कहते हैं कि सॉरी मेरा ध्यान नहीं था, मैं तो अपने ही विचार में खोई हुई थी। कोई हमें कुछ कहता है पर हम कहते हैं सॉरी मैंने सुना नहीं, आप फिर से बताइए। हमें वो ही दिखाई देता है, वो ही सुनाई देता है जहां मन अटेंटिव है। तो आंखें बंद करने की, आंखें स्थिर करने की, आंखें फाड़कर बैठने की बात नहीं है, मन बुद्धि मगन करने की आवश्यकता। मन को परमात्मा के प्रति फोकस करने की जरूरत है। इसलिए आंखें नेचुरल खुली रहने देना है। हम शरीर से यहां बैठते हैं, मन बुद्धि से असली घर परमधाम में जाते हैं। आज आप यहां बैठे हैं पर मन से तो आज पहुंच गए ना घर। हम इस घर को जानते हैं इसलिए वहां मन बुद्धि से जाते रहते, पर अब पता चला ना हमारा असली घर इस दुनिया से दूर पांच तत्वों से पार परम धाम है। वो रूहों की दुनिया है, ये फिजिकल वर्ल्ड है। इसलिए मन बुद्धि से असली घर परम धाम में जाते हैं, उस परम ज्योति बिंदु प्यारे पिता को देखते हैं, बुद्धि से उसे याद करते हैं, प्यार करते हैं, उस याद और प्यार में एकाग्र होना उसे योग कहते हैं, उसे योग कहते हैं। तो ये है राजयोग की अंतर यात्रा की, परमात्मा याद की सहज विधि, जिस याद से रूहानी आनंद, आंतरिक शांति, शक्ति, खुशी की अनुभूति हम कर सकते हैं। मैं चाहूंगी आपको स्पष्ट है कि कैसे हमें अभ्यास करना है, और आज का अभ्यास हम विधि पूर्वक करेंगे। तो सभी व्यवस्थित बैठ जाएंगे। कमर सीधी करके बैठेंगे, भले आप कुर्सी सोफा के बैक का सपोर्ट लेना चाहे लीजिए, पर स्ट्रेट बैठिए। एक दो से अलग अलग होकर बैठेंगे, टच करके ना बैठे। कुछ क्षणों के लिए अन्य सभी बातों से न्यारे हो जाइए। आसपास की व्यक्तियों से, परिस्थितियों से साक्षी बन जाइए। विचारों के विस्तार को समेट लें, स्वयं के मस्तक में भ्रकुटी के बीच आत्मस्वरूप के प्रति केंद्रित हो जाइए। मैं आत्मा हूँ, अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ। अविनाशी चैतन्य शक्ति। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक, इन कर्मेंद्रियों की राजा, मेरे लिए यह दुनिया एक कर्म क्षेत्र है। मेरा असली घर शांति धाम है। जो इस दुनिया से दूर है, पांच तत्वों से पार है, अखंड लाल ज्योतिर्मय ब्रह्म तत्व वहां छाया हुआ है। मैं आत्मा परम धाम के निवासी हूँ। मुझ आत्मा की अविनाशी पिता परमात्मा भी परम धाम के निवासी है। मैं मन की आंख से ज्ञान नेत्र से परम ज्योति बिंदु पिता परमात्मा को देख रही हूँ। मुझ आत्मा के अति प्रिय कल्याणकारी मेरे अविनाशी पिता आपके सद्ज्ञान को प्राप्त कर आज मुझे अपार हर्ष हो रहा है। मुझे स्पष्ट है कि मैं कौन हूँ और आप पिता कौन है। मेरे मन का अज्ञान अंधकार समाप्त हुआ है। मेरी बुद्धि रोशन हो गई है। जीवन का सही ठिकाना मुझे प्राप्त हो गया है। अब मेरा यही लक्ष्य है, मेरे प्यारे शिव पिता, जो सत्य ज्ञान आप हमें देते हैं। जिन गुणों के आप सागर हैं, जिन शक्तियों के आप अखुट भंडार हैं, मेरे अति मीठे प्यारे शिव बाबा, अब मेरा यही लक्ष्य है आपके संपूर्ण सत्य ज्ञान को आपके सर्व ईश्वरीय गुणों को आपकी समस्त रूहानी शक्तियों को मुझे भी जीवन में धारण करनी है। शांति के सागर प्यारे शिव बाबा, मैं आत्मा आपकी संतान, मैं शांत स्वरूप, आप शांति दाता है, आपकी संतान में आत्मा, शांति दूत, पीस मैसेंजर हूँ। मुझे स्वयं की शांत आत्मा स्थिति बनानी है और सर्वत्र शांति फैलानी है। मेरे सर्वशक्तिमान सदा पावन शिव बाबा, आपकी याद से मैं आत्मा शुद्ध पवित्र बनती जाती हूँ। मैं आप से योग लगाती हूँ, मैं शक्तिशाली बनती जाती हूँ। मुझे स्वयं में अपने अलौकिक आत्मस्वरूप में आनंद है। मुझे प्यारी बाबा की याद में परमानंद है। मुझे अपने श्रेष्ठ कर्तव्यों में आनंद है। मैं आत्मा हूँ। ईश्वरीय संतान हूं, मैं सत्य हूं, चैतन्य हूं, आनंद स्वरूप हूं। ओम।